नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार के साथ मैं हूँ मुनीश शर्मा।
मैं हूँ विनीता ठाकुर। श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपसे 1 से 15 अगस्त के अंक को लेकर चर्चा करेंगे। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का आधार स्तंभ तैयार किया है, जो 18वीं लोकसभा का पहला और वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट बन गया है। विकसित भारत के विराट एवं निर्णायक संकल्प को साकार करने की निरंतरता का प्रतीक। दूरदृष्टि से पेश किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक आम बजट ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त किया है, जिसका उद्देश्य है अमृत काल में सुदृढ़ भारत की ऐसी तस्वीर को आगे बढ़ाना, जहां निरंतरता के साथ नीतिगत पहल से मिले इंफ्रास्ट्रक्चर को गति, रोजगार के अनगिनत नए अवसर के साथ विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य के साथ ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया आम बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाएगा और विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। इस बार यही आम बजट हमारी आवरण कथा बनी है, जिस पर हम अपनी कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुनीश
जी, हाँ बिल्कुल विनीता जी, और अंतरिम बजट में निर्धारित कार्य नीति की बात करें तो इसके अनुरूप इस बजट में विकसित भारत के 9 आधार स्तंभ दृष्टिगोचर होते हैं, जो हैं कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार। श्रोताओ, रोजगार 18वीं लोकसभा के पहले बजट का आधार बन गया है। ये बजट भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। शोध और अनुसंधान के साथ साथ महंगाई दर को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं को अनगिनत रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए बीते एक दशक में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उत्पादन के लिए प्रोत्साहन से जुड़ी योजना की सफलता देश और दुनिया ने देखी है, जिससे विनिर्माण और स्वदेशी को बढ़ावा मिला है। और अब केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन की घोषणा की है, जिससे करोड़ों नए रोजगार सृजित होंगे। इस अनूठी योजना के तहत अपने जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा को एक महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए केंद्र सरकार देगी। कौशल विकास हो या उच्च शिक्षा के लिए सहायता या फिर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की योजना, गांव गरीब क्षेत्र से जुड़े युवा अब देश की शीर्ष कंपनियों में काम कर सकेंगे और इस आम बजट में उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। केंद्र सरकार का उद्देश्य हर गांव और हर घर में उद्यमी तैयार करना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की सीमा को भी 2 गुना बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे छोटे कारोबारियों, महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को एक नया बल मिलेगा।
केंद्र सरकार भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने को संकल्पित है, जिससे देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इसी सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार गरीबों को मिलता है। ऐसे में बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजनाओं की घोषणा की गई है। विनिर्माण और निर्यात के इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए आम बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। ई कॉमर्स निर्यात हब और फूड क्वालिटी जांच के लिए 100 इकाइयों की स्थापना होगी, जिससे एक जिला एक उत्पाद अभियान को गति मिलने वाली है। ये बजट स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए नए अवसर लेकर आया है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो या एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे में कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। देश में नए आर्थिक हब विकसित होने से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। आज रक्षा क्षेत्र में निर्यात अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न केवल आवंटन बढ़ाया गया है, बल्कि अनेक प्रावधान किए गए हैं। रेलवे परिवहन की जीवन रेखा मानी जाती है और इस बार के बजट में इसके लिए रिकॉर्ड आवंटन हुआ है। आज भारत के प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ा है और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं बढ़ी है, इसलिए बजट में पर्यटन को लेकर भी विशेष बल दिया गया है। इसलिए आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं,
साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़े, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।
दोस्तों, विकास की पहुंच चहुंओर हो और देश के सभी क्षेत्र समान गति से विकास करें, इसके लिए पहली बार किसी सरकार ने पूर्वोदय के विजन को बजट में शामिल किया है, ताकि अन्य हिस्सों की तरह देश के पूर्वी क्षेत्र का भी समग्र विकास हो। इस विजन से पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, जल परियोजना और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण विकास को नई गति देगा। देश के पूर्वी भारत के राज्य प्राकृतिक संपदा से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएं भी सुदृढ़ हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा, ताकि ये क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारा और गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारा और गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गया का यह औद्योगिक केंद्र सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए एक अच्छा मॉडल भी बनेगा, और इस मॉडल से भारत की विकास यात्रा में विकास भी, विरासत भी प्रतिबिंबित होगा।
केंद्र सरकार ने आम बजट में न केवल 5 वर्ष का वित्तीय खाका पेश किया है, बल्कि भावी पीढ़ी को भी राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाते हुए सुधारों की आधारशिला रख दी है, ताकि 2047 में विकसित भारत का संकल्प साकार हो। आम बजट में अगली पीढ़ी के सुधार के लिए आर्थिक नीति फ्रेमवर्क के साथ रोजगार के अवसरों और सतत उच्च विकास के लिए सुधारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार, ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य, शहरी भूमि संबंधी कार्य, श्रम संबंधी सुधार, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, पूंजी और उद्यमशीलता संबंधी सुधार, वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति, जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी, परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश, माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य NPS खाते में बदला जा सकेगा। साथ ही अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में तकनीक का प्रयोग, व्यवसाय करने की आसानी, डेटा और सांख्यिकी, नए पेंशन योजना पर रचनात्मक दृष्टिकोण आदि भविष्योन्मुखी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
कभी वित्तीय लेखा जोखा दस्तावेज बनकर हर वर्ष पेश होने वाला आम बजट एक अनुष्ठान से ऊपर उठकर जनभागीदारी का एक सशक्त माध्यम बनकर सरकार की ऊर्जा को व्यापक विकास की प्राथमिकताओं से कस रहा है। बजट पेश करने की लीक वाली परंपरा तोड़कर मोदी सरकार ने क्रांतिकारी पहल की थी। वर्ष 2017-18 से बजट 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को पेश किया जाता है ताकि इसे पहले ही संसद से पारित कराया जा सके, जबकि पूर्व में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर संसद में बजट पेश होता था और बजट पास होते होते मई के दूसरे सप्ताह तक विधायी प्रक्रिया जारी रहती थी और बजट पास होते होते मई के पहले दूसरे सप्ताह तक विधायी प्रक्रिया जारी रहती थी, जिससे बजट की बड़ी राशि खर्च नहीं हो पाती थी। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीने के खर्च के लिए सरकार को संसद से लेखा अनुदान पारित कराना पड़ता था। पहले के समय में जब बजट लागू होता था तो मई का महीना निकल जाता था और उसी समय बारिश शुरू हो जाती थी, जो जुलाई अगस्त सितंबर तक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सारी योजनाओं को रोक देती है, जबकि अप्रैल से लेकर जून तक का समय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्यों विनीता जी?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में बजट को 1 महीना पहले करने से अप्रैल जून तक के 3 महीनों का इस्तेमाल कर तेज गति से बढ़ने की दिशा में काम हो रहा है। सरकार की सोच बनी कि जब पहले अप्रैल से नया बजट लागू हो तो उसी दिन से सारी योजनाएं भी आगे बढ़नी चाहिए, फरवरी मार्च इसकी तैयारी में लगाया जाए। इस बार आम चुनाव का वर्ष होने के कारण फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था और अब 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश कर देश के विकास की तस्वीर को सामने रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते भी हैं, आप सबको पता है कि हमने एक नई परंपरा शुरू की है। एक तो बजट को हमने 1 महीना पहले किया है, 1 अप्रैल से बजट लागू होता है तो इस बीच हमें 2 महीने तैयारी के लिए मिल जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक राष्ट्र के रूप में अभूतपूर्व अवसर भारत के सामने खड़ा है और सरकार इस मौके से चूकना नहीं चाहती, इसलिए सबकी भागीदारी के साथ सरकार के मुखिया के नाते पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने नई पहल की शुरुआत की है।
निश्चित रूप से अमृतकाल का दूसरा आम बजट आजादी के 100वें वर्ष के नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। ये बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से आगे बढ़ाने को दृढ़ संकल्पित केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी धर्म, जाति, लिंग और आयु के भारतीय अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति करें। ऐसे में 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर के आया है। ये बेहतर प्रगति और उज्जवल भविष्य लेकर आया है। वर्ष 2024-25 का आम बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक का काम करेगा और विकसित भारत की ठोस नींव रखेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह 140 करोड़ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाकर गुणवत्तापूर्ण जीवन देने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में सुनिए।
साथियों, आज देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहा है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहे हैं, हम देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अगले सप्ताह भी हम इस अंक पर परिचर्चा को जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकती हैं। पता है AIR NSDTalks@gmail.com।